आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
मंटो का अफसाना, फुसफुसी कहानी। सख्त सर्दी थी, रात के 10 बजे थे। शालीमार बाग से वो सड़क जो इधर लाहौर को आती है सुनसान और तारीख थी। बादल घिरे हुए थे और हवा तेज चल रही थी। गिर्दो पेश की हर चीज ठिठुरी हुई थी। सड़क के दो रोया पस्त कद मकान और दरख्त धुंधली धुंधली रोशनी में सिकुड़े सिकुड़े दिखाई दे रहे थे। बिजली के खंभे एक दूसरे से दूर दूर हटे, रूठे और उकताए हुए से मालूम होते थे। सारी फजा में बदमजगी की कैफियत थी। एक सिर्फ तेज हवा थी जो अपनी मौजूदगी मनवाने की बेकार कोशिश में मसरूफ थी। जब दो साइकिल सवार नमूदार हुए और हवा के तेजो तुंद झोंके उनके कानों से टकराए तो उन्होंने अपने अपने वर्कोट का कॉलर ऊंचा कर लिया। दोनों खामोश थे। मुखालिफ हवा के बायस उन्हें पैडल चलाने में काफी जोर सर्फ करना पड़ रहा था, मगर वो इसके एहसास से गाफिल एक दूसरे का साया बने शालीमार बाग की तरफ बढ़ रहे थे। अगर कोई उन्हें दूर से देखता तो उसे ऐसा मालूम होता कि सड़क जो लोहे की जंग आलूद चादर की तरह फैली हुई थी उनकी साइकिलों के साकित पहियों के नीचे हौले हौले खिसक रही। बहुत देर तक वो दोनों सुनसान फासला खामोशी में तय करते रहे। आखिर उनमें से एक साइकिल से उतरकर अपने सर्द हाथ मुंह की भाप से गर्म करने लगा।
सख्त सर्दी है,
उसके साथी ने ब्रेक लगाई और हंसने लगा। भाईजान, वो विस्की कहाँ गई?
जहन्नम में, जहां सारी शाम गारत हुई वहां वो भी हुई।
दोनों भाई थे, मगर ऐसे भाई जो चारों ऐब शरई इकट्ठे मिलजुल कर करते थे। दोनों ने सुबह ये प्रोग्राम बनाया था कि दफ्तर से फारिग होकर रिश्वत के उस रुपए का जो उन्हें 2 बजे के करीब मिलना था जायज इस्तेमाल सोचेंगे। रुपया उन्हें 2 बजे से पहले ही मिल गया था, इसलिए कि रिश्वत देने वाला बहुत बेकरार था। बड़े भाई ने रुपया जेब में रखने से पहले तमाम नोट अच्छी तरह देख कर इत्मीनान कर लिया कि वो निशान जदा तो नहीं है। रकम ज्यादा नहीं थी, 201 रुपए थे। उन्होंने 200 तलब किए थे, मगर 1 का इजाफा रिश्वत देने वाले ने शगुन के लिए किया था, जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से मशवरा करके एक अंधे भिखारी को दे दिया था। अब वो दोनों हीरा मंडी की तरफ जा रहे थे। छोटे भाई की जेब में स्कॉच की बोतल पड़ी थी, बड़े की जेब में 3-5 के 2 डिब्बे। आमतौर पर दोनों गोल्ड फ्लैग पीते थे, मगर जब रिश्वत मिलती तो ऐसा ब्रांड पीते थे जिसके दाम ज्यादा हों। हीरा मंडी में दाखिल हुआ ही चाहते थे कि बादशाही मस्जिद से अजान की आवाज आई। बड़े ने छोटे से कहा, चलो यार नमाज पढ़ ले। छोटे ने अपनी फूली हुई जेब की तरफ देखा। इसका क्या करें भाईजान? बड़े ने थोड़ी देर सोचा और कहा, इसका इंतजाम कर लेते हैं, अपना यार बट जो है। बट पान फरोश की दुकान करीब ही थी। छोटे ने महीन कागज में लिपटी हुई बोतल उसके हवाले कर दी। बड़े ने अपनी और अपने भाई की साइकिल दुकान के थड़े के साथ टिकाई और बट से कहा, हम अभी आए नमाज पढ़ के। बट ने कह कहा लगाया, दो नफिल शुक्राने के भी। दोनों भाइयों ने बादशाही मस्जिद में नमाज अदा की और 2 नफिल शुक्राने के भी पढ़े। वापस आए तो क्या देखते हैं कि बट की दुकान बंद है। साथ वाले दुकानदार से पूछा तो उसने कहा, नमाज पढ़ने गया है। दोनों भाइयों को सख्त ताज्जुब हुआ, नमाज? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, साल 6 माह ही में कभी कभी पढ़ लिया करता है। दोनों बहुत देर तक बट की वापसी का इंतजार करते रहे। जब वो ना आया तो बड़े ने छोटे से कहा, जाओ यार एक बोतल और ले आओ, मैंने खाम खाओ सराम ज्यादे बट पर एतबार किया। छोटे ने रुपए लिए और बड़े से कहा, जेब में ही पड़ी रहती तो क्या हर्ज थी। छोड़ो यार, हटाओ इस किस्से को, मुझे बोतल जाने का इतना अफसोस नहीं, कहीं गिरकर भी टूट सकती थी। अफसोस तो इस बात का है कि बड़ी बेदर्दी से पी रहा होगा कमबख्त। छोटे ने पैडल पर पांव रखा और पूछा, आप यहीं होंगे? बड़े ने बड़े उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, हाँ भाई यहीं खड़ा रहूंगा, शायद बहक कर इधर आ निकले, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। छोटा जल्दी वापस आ गया, मगर उसका चेहरा लटका हुआ था। उसके साथ एक और आदमी था जो करियर पर बैठा हुआ था। बड़ा ताड़ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन उसे ज्यादा देर तक जहनी कश्मकश में मुब्तला ना रहना पड़ा, क्योंकि छोटे ने साइकिल से उतरते ही उसको सारा वाकया सुना दिया। शराब की दुकान से दूसरी बोतल लेकर जो ही वो बाहर निकला तो बारिश हो चुकी थी। उसे जल्द वापस पहुंचना था। अफरा तफरी में उसने साइकिल पर सवार होने की कोशिश की, मगर वो ऐसी फिसली की संभाल ही ना संभली। सड़क पर औंधे मुंह गिरा और दूसरी बोतल भी जहन्नुम में चली गई। छोटे ने सारी दास्तान तफसील के साथ सुनाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया।
मैं बच गया भाईजान, बोतल का कोई टुकड़ा अगर कपड़े चीर कर गोश्त तक पहुंच जाता तो इस वक्त किसी अस्पताल में पड़ा होता।
बड़े ने अल्लाह का शुक्र अदा करना मुनासिब ना समझा। शराब की दुकान से जो आदमी उसके भाई के साथ आया था उसको तीसरी बोतल के पैसे देकर उसने बट पान फरोश की बंद दुकान की तरफ देखा और दिल ही दिल में एक बहुत हौलनाक किस्म की गाली देकर उसकी दुकान को भस्म कर डाला। दोनों को मालूम था कि उन्हें कहां जाना है। चौक के उस तरफ नान कबाब वाले के ऊपर जो बाला खाना था उसी में इन दोनों भाइयों की बालाई आमदनी का जायज निकास होता था। लौंडिया कमगो थी, खाने पीने वाली थी, आदातो अतवार के लिहाज से तवायफ कम और क्लर्क ज्यादा थी। इसीलिए उनको पसंद थी कि वो खुद भी क्लर्क थे। जब दोनों खूब पी जाते तो दफ्तरी गुफ्तगु शुरू कर देते। हेड क्लर्क कैसा है, साहब कैसा है, उसकी घरवाली की तबीयत कैसी है, घंटों अपने अपने माथहतों और अपने अफसरों के माजी और हाल पर तबसरा करते रहते और वो बड़े इन्हीं से सुनती रहती। बहुत कंसुरी थी, मगर दोनों भाई उसका गाना सुनकर यूं झूमते थे जैसे वो उनके कानों में शहद टपका रही। लेकिन आज जब वो गाने लगी तो उनको पहली मर्तबा महसूस हुआ कि वो सुर में है ना ताल में। चुनांचे उसका गाना बंद करा के उन्होंने बाकी बची हुई शराब पीना शुरू कर दी। तवायफ का नाम शायदा था, बहुत कम पीने वाली, मगर जाने उसे क्या हुआ कि जब दोनों भाइयों ने उसका गाना बंद करा के पीना शुरू कर दिया तो वो बहक गई और ऐसी बहकी की बोतल उठाकर सारी की सारी सूखी पी गई। बड़े को बहुत गुस्सा आया, मगर वो उसे पी गया क्योंकि छोटा मजे में था। लेकिन ज्यादा देर तक उस पर ये कैफ तारी ना रहा, क्योंकि जब उसने और पीने के लिए बोतल उठाई तो वो खाली थी। अब दोनों यकसा तौर पर बेमजा थे। बड़े ने छोटे से मशवरा करना जरूरी न समझा। शायदा के उस्ताद मांडू को रुपए देकर उसने कहा, जाओ भाग कर जाओ और एक बोतल जिमखाना विस्की ले आओ। उस्ताद ने रुपए गिनकर जेब में रखे और कहा, सरकार ब्लैक में मिलेगी। बड़ा जो कि पहले ही बनाया हुआ था चिल्ला कर बोला, हाँ जानता हूं, इसीलिए तो मैंने 5 ज्यादा दिए हैं। जिमखाना आई, दो दौड़ चले तो बड़े ने महसूस किया कि पानी मिली है। इम्तिहान लेने की खातिर उसने थोड़ी सी रकाबी में डाली और उसको दिया सलाई दिखाई। एक लहजे के लिए नीम जान नीलगू सा धुआं उठा और दिया सलाई शूं करके रकाबी में बुझ गई। दोनों भाइयों के इस कदर कोफ्त हुए कि गुस्से में भरे हुए उठे। बड़े ने पानी मिली बोतल हाथ मिली। उसका इरादा था कि ये वो उस अशराफ फरोश के सिर पर दे मारेगा जिसने बेईमानी की थी, मगर फौरन उसे ख्याल आया कि उनके पास परमिट नहीं था, इसलिए मजबूरन गालियां देकर खामोश हो गया। छोटे की कोशिशों से बदमजगी किसी हद तक दूर हो गई थी कि शायदा ने जो उसकी मदद कर रही थी सब खाया पिया वलना शुरू कर दिया। अब दोनों भाइयों ने मुनासिब ख्याल किया कि चला जाए। चुनांचे उस्ताद की तहवील से साइकिलें लेकर वो हीरा मंडी की गलियों में देर तक बेमकसद घूमते रहे, मगर इस आवारा गर्दी के बायस उनकी कोफ्त दूर ना हुई। वापस जाने का इरादा कर ही रहे थे कि उन्हें बट दिखाई दिया, नशे में धुत था और कोठों की तरफ गर्दन उठा उठा कर वाही तबाही बकरा था। दोनों भाइयों के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि आगे बढ़कर उसका टेटवा दबा दे, मगर उनसे पहले एक सिपाही ने उसको पकड़ लिया और थाने ले लिया। छोटे ने बड़े से कहा, चलिए भाईजान जरा तमाशा देखें। बड़े ने पूछा, किसका? बट का और किसका? बड़े के होंठों पर माना खेज मुस्कुराहट नमूदार हुई। पागलो, थाने में अगर उसने हमें पहचान लिया या किसी ने हमारे मुंह की बू सूंघ ली तो हमें अपना तमाशा भी साथ साथ देखना पड़ेगा। छोटे ने दिल ही दिल में बड़े की दुरंदेशी की दाद दी और कहा, तो चलिए घर चले। दोनों अपनी अपनी साइकिल पर सवार हुए। बारिश थम चुकी थी लेकिन सर्द हवा बहुत तेज चल रही थी। अभी वो हीरा मंडी से बाहर निकले थे कि उन्हें इस तांगे में जो उनके आगे आगे चल रहा था अपने दफ्तर का बड़ा अफसर नजर आया। दोनों ने एकदम उसकी निगाहों से बचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे क्योंकि वो उन्हें देख चुका था। हेलो, उन्होंने इस हेलो का जवाब ना दिया। हेलो। इस हेलो के जवाब में उन्होंने अपनी अपनी साइकिल रोक ली। अफसर ने तांगा ठहरा लिया और उनसे बड़े मुरब्बियाना अंदाज में कहा, कहो मिस्टर, ऐश हो रहे हैं? छोटे ने जी हां और बड़े ने जी नहीं में जवाब दिया। इस पर अफसर ने कहकहा लगाया, मेरा ऐश तो अधूरा रहा। फिर उसने अफसराना अंदाज में पूछा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? इस मर्तबा बड़े ने जी हां और छोटे ने जी नहीं में जवाब दिया, जिस पर अफसर ने दूसरा कहकहा बुलंद किया जो ठेठ अफसराना था, 100 रुपए काफी होंगे इस वक्त। बड़े ने बड़े मैकेनिकी अंदाज में अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और अपने छोटे भाई की तरफ बढ़ा दिया। छोटे ने पकड़कर अफसर के हवाले कर दिया, जिसने थैंक यू कहा और तांगे से उतरकर लड़खड़ाता हुआ एक तरफ चला गया। दोनों भाई थोड़ी देर तक खामोश रहे। बड़े ने तमाम हालात पेश नजर रखकर अपने सिर को जोर से जुम्बिश दी, मालूम नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। छोटे के मुंह से ये बड़ी गाली, उसी का जिसने 201 रुपए दिए। बड़े ने भी उसको मुनासिब मौजू गाली से याद किया। ठीक कहते हो, लेकिन मैं समझता हूं सारा कसूर उस फालतू रुपए का है जो उसने अपनी मां की रवां से शगुन के तौर पर दिया था, उस नमाज का भी जो हमने पढ़ी और उस हरामी बट का भी। मैं तो शुक्र करता हूं कि पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वरना मैंने आज जरूर उसका खून कर दिया होता और लेने के देने पड़ जाते। लेने के देने तो बढ़ ही गए, खुदा मालूम ये हमारा अफसर कहां से आ टपका। लेकिन मैं समझता हूं अच्छा ही हुआ, 100 रुपए में साला काना तो हो गया। ये तो ठीक है, लेकिन आज की शाम बहुत बुरी गारत हुई। चलो चलें, ऐसा ना हो कोई और आफत आ जाए। दोनों फिर अपनी साइकिल पर सवार हुए और हीरा मंडी से निकल आए। बड़े ने दफ्तर से निकलते ही ये मंसूबा बनाया था कि स्कॉच के 2-3 दौर होने के बाद वो शैदा से कहेगा कि वो अपनी छोटी बहन को बुलाए। उसकी वो बहुत तारीफें किया करती थी, कम उम्र और अल्लड़ थी। अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उसने गांव की सेहतमंद फजा में गुजारा था और धंधा शुरू किए उसे बामुश्किल चंद महीने हुए थे। स्कॉच विस्की और शैदा की छोटी बहन, और इससे बढ़कर और क्या याशी हो सकती। मगर उसका यह सारा मंसूबा खाक में मिल गया और सिर्फ कोफ्त बाकी रह गई। छोटे ने भी खेल खेलने की सोची थी। मौसम खुशगवार था, विस्की और शैदा यकीनी तौर पर से और भी खुशगवार बना देते, और वो इस कदर महजूज होता कि 15-20 रोज तक उसे और किसी ऐश की जरूरत ना महसूस होती। मगर सारा मामला चौपट हो गया। दोनों के सिर भारी और दिल कड़वे कसैले थे। दोनों की हर बात उल्टी साबित हुई। स्कॉच की पहली बोतल बट पान फरोश ले उड़ा, दूसरी सड़क के पत्थरों पर टूटकर बह गई, तीसरी ऐन उस वक्त दागे मफारिख दे गई जबकि सुरूर गट रहे थे, चौथी किफायत की खातिर देसी मंगवाई तो उसमें आधा पानी निकला, और 100 का आखिरी नोट अफसर ने हथिया लिया। बड़े की कोफ्त ज्यादा थी, यही वजह थी कि उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो चाहता था कि और भी कुछ हो, कोई ऐसी बात हो कि वो कुत्तों की तरह जोर जोर से भौंकना शुरू कर दे, या ऐसा जच बच हो कि अपनी साइकिल के पुर्जे उड़ा दे, अपने तमाम कपड़े उतार कर फेंक दे और नंग धड़ंग किसी कुएं में छलांग लगा दे। जिस तरह हालात ने उसका मजहका उड़ाया था, उसी तरह वो उनका मजहका उड़ाना चाहता था। मगर मुसीबत ये थी कि वो हालात पैदा होकर वहीं हीरा मंडी में वफात पा गए थे। अब नए हालात और भी ऐसे हालात पैदा हों जिनका वो हसब मंशा मजहका उड़ा सके, इसके मुतालिक सोचने से वो खुद को आरी पाता था। एक सिर्फ घर था जहां लिहाफ उड़कर सो सकते थे, मगर खाली खोली लिहाफ उड़कर सो जाने में क्या रखा था। इससे तो बेहतर यही था कि वो 100-100 के 2 नोटों में चरस मिलाकर तंबाकू भरते और पीकर अंटा गफील हो जाते, और सुबह उठकर शगुन के 1 रुपए का किसी पीर फकीर के मजार पर चढ़ावा चढ़ा देते। सोचते सोचते बड़े ने जोर का नारा बुलंद किया, दैट तेरी ऐसी की तैसी। छोटे ने घबरा कर पूछा, पंक्चर हो गया क्या? बड़े ने झुंझलाकर जवाब दिया, नहीं यार, मैंने अपना दिमाग पंचर करने की कोशिश की थी, छोटा समझ गया। अब जल्दी घर पहुंच जाएं। बड़े की झुंझलाहट में इजाफा हो गया, हाँ क्या करेंगे, बत्तखों के बाल मूंडेंगे। छोटा बेख्तियार हंसने लगा। बड़े को ये हंसी बहुत नागवार गुजरी। खामोश रहो जी। देर तक दोनों खामोशी से घर के फासले तय करते रहे। अब वो सड़क पर थे जो लोहे की जंग आलू चादर की तरह फैली हुई थी और ऐसा लगता था कि उनकी साइकिलों के पहियों के नीचे हौले हौले खिसक रही है। बड़े ने जब अपने सर्द हाथ मुंह की भाप से गर्म किए और कहा,
सख्त सर्दी है,
तो छोटे ने अजराहे मजाक पूछा, भाईजान वो विस्की कहां गई? बड़े के जी में आए कि छोटे को साइकिल समेत उठाकर सड़क पर पटक दे, मगर इस कदर कह सका, जहन्नम में जहां सारी शाम गारत हुई वहां वो भी हुई। ये कहकर वो बिजली के खंबे के साथ खड़ा होकर पेशाब करने लगा। इतने में छोटे ने आवाज दी, भाईजान वो देखिए कौन आ रहा है। बड़े ने मुड़कर देखा, एक लड़की थी जो सर्दी में ठिठुरती कांपती कदमों से रास्ता टटोलती उनकी जानिब आ रही थी। जब पास पहुंची तो उसने देखा कि अंधी है, आंखें खोली थी मगर उसको सुझाई नहीं देता था क्योंकि खंबे के साथ वो टकराते टकराते बची थी। बड़े ने गौर से उसकी तरफ देखा, जवान थी, उम्र यही 16-17 बरस के करीब होगी। फटे पुराने कपड़ों में भी उसका सुडौल बदन जाज़िबे तवज्जो था। छोटे ने उससे पूछा, कहां जा रही है तू? अंधी ने ठिठुरते हुए लहजे में जवाब दिया,
रास्ता भूल गई हूं, घर से आग लेने के लिए निकली थी।
बड़े ने पूछा, तेरा घर कहां है? अंधी बोली,
पता नहीं, कहीं पीछे रह गया है।
बड़े ने उसका हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ, और वो उसे सड़क के उस पार ले गया जहां ईंटों का पुराना भट्टा था जो वीराने की शक्ल में बिखरा हुआ था। अंधी समझ गई कि उसको रास्ता बताने वाला उसे किस रास्ते पर ले जा रहा है, मगर उसने कोई मजामत ना की, शायद वो ऐसे रास्तों पर कई मर्तबा चल चुकी थी। बड़ा खुश था कि चलो कोफ दूर करने का सामान मिल गया, किसी मदाखिलत का खटका भी नहीं था। ओवर कोट उतार कर उसने जमीन पर बिछाया, वो और अंधी दोनों बैठकर बातें करने लगे। अंधी जन्म की अंधी नहीं थी, फसादास से पहले वो अच्छी भली थी, लेकिन जब सिखों ने उसके गांव पर हमला किया तो उसके भगदड़ में उसके सिर पर गहरी चोट लगी जिसकी बायस उसकी बसारत चली गई। बड़े ने ऊपरी दिल से उससे हमदर्दी का इजहार किया, उसको उसके माजी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2 रुपए जेब से निकालकर उसने उसकी हथेली पर रखे और कहा,
कभी कभी मिलती रहा करना, मैं तुम्हें कपड़े भी बनवा दूंगा।
अंधी बहुत खुश हुई। बड़े ने जब उसको रोशन आंखों और फुर्तीले हाथों से अच्छी तरह टटोला तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसकी कोफ्त काफी हद तक दूर हो गई, लेकिन एकदम उसे अपने छोटे भाई की बिची हुई आवाज सुनाई दी,
भाईजान भाईजान।
बड़े ने पूछा,
क्या है?
छोटा सामने आया। बड़े खौफजदा लहजे में उसने कहा,
2 सिपाही आ रहे हैं।
बड़े ने होशो हवास कायम रखते हुए अपना ओवरकोट खींचा जिस पर अंधी बैठी हुई थी। झटके से वो सखंदक में गिर पड़ी जिसमें से पकी हुई ईंटें निकाली गईं। गिरते वक्त उसके मुंह से बुलंद चीख निकली, मगर दोनों भाई वहां से गायब हो चुके थे। चीख सुनकर सिपाही आए तो उन्होंने बेहोश अंधी को खंदक से बाहर निकाला। उसके सिर से खून बह रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे होश आया तो उसने सिपाहियों को यूं देखना शुरू किया जैसे वो भूत हैं। फिर एकदम दीवानावार चिल्लाने लगे,
मैं देख सकती हूं, मैं देख सकती हूं, मेरी नजर वापस आ गई है।
ये कहकर वो भाग गई। उसके हाथ से जो 2 रुपए गिरे वो सिपाहियों ने उठा लिए।